हरे कृष्णा। दिस लेक्चर ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 16 एंड 17 गिवन इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑन 20th सितंबर 2016 बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास। श्लोक है, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप इसे सुनिए खाली। नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभ्योरपि दृष्टान्तेस्तु अन्यन्यो तत्वदर्शिभिः। तो इसमें कहा है, तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें हमने पिछली बार भी समझा था इसके कहने का क्या अर्थ है। इसमें कहा गया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभ्योरपि दृष्टस्अन्तस्त्वं ना अन्यस्तत्वदर्शिभिः। इसमें कहा गया है कि असत का भाव नहीं और सत का अभाव नहीं। हमने पिछली बार चर्चा किया था कि श्रील प्रभुपाद जी कहते थे असत का भाव नहीं, मतलब जो हमारे शरीर में असत है वो नित्य नहीं है। तो असत क्या है हमारे शरीर में, असत क्या वस्तु है जो असत है, सत्य नहीं है। क्या है असत्य? हम, ये शरीर। हाँ, तो इसलिए ये नित्य नहीं है। लेकिन सत का अभाव नहीं, सत जो चीज है वो सदा ही रहने वाली है, वो नित्य है। तो सत क्या रहता है? आत्मा। आत्मा अपरिवर्तनीय है, आत्मा जो है वो स्थिरत्व है, चिरस्तित्व है, उसका अस्तित्व हमेशा विराजमान रहता है। तो उस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो सच्चाई है उसका कोई अभाव नहीं है। तो आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती है। 16वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया। हाँ, और कहा जाता है कि इसी श्लोक से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सही मायने में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से ही अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया। तो तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सही मायने में मोहग्रस्त जीव को यहीं से ज्ञान प्राप्त करना है, इसी श्लोक से, सही मायने में। क्योंकि इस 16वें श्लोक से लेकर के आगे के कई श्लोकों तक जो हम हैं उसके बारे में ज्ञान दिया गया है। हम कौन है उसके बारे में ज्ञान दिया है। ये ज्ञान किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में नहीं मिलने वाला है। तो भगवद गीता के अंदर भी ये ज्ञान बड़े सूक्ष्म रूप से दिया गया है। लेकिन जो लोग श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भगवद गीता को नहीं पढ़ते हैं, तात्पर्यों को नहीं पढ़ते हैं, वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर की मूल्य चीज क्या है जो कि भगवान समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मोहग्रस्त जीव के लिए भगवान ने इसी श्लोक 16वें श्लोक से ही उपदेश देना प्रारंभ किया। और 17वें श्लोक के अंदर, इसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, और उस अव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान ने यहां बोल दिया कि आत्मा को नष्ट करने में समर्थ कोई भी नहीं है। फिर भी लोग बोलते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्मा की तो कभी हत्या होती नहीं है, जो भी होती है वो शरीर का ही नुकसान, शरीर ही विनाश होता है। तो यहां लिखा है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो सारे शरीर में क्या व्याप्त है? आत्मा। पक्का? क्या व्याप्त है सारे शरीर में, सोचिए जरा। आत्मा का अगले पन्ने पे आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने यहां पर एक उपनिषद का यहां पर एग्जाम्पल लिया है, श्वेताश्वतर उपनिषद। उसके 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है, क्या बोलते हैं उसके अंदर, कहते हैं, बालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवसा विज्ञासा च अनत्याय कल्पते। तो यहां कहा गया बाल अग्रह शत भागस्य, हमारे बाल के आगे के हिस्से को ले लो एक बाल को, और उसके अग्र भाग के शत भागस्य, शत मतलब 100 हिस्से करो, और फिर कहा गया उसके आगे शतधा कल्पितस्य च, और फिर आगे उसके 100 के 100 भाग और करो, तो कितने हो गए 100 भाग किए और फिर उसके फिर से 100 कर दिए, तो कितने भाग हो गए 10,000। तो बाल के अग्र भागस्य, हमारे एक बाल का अग्र भाग ले लो, हाँ, उस अग्र भाग के 100 हिस्से करो और उसमें से एक हिस्से के फिर 100 हिस्से करो, तो कितना छोटा हो गया, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो बताया गया है कि परमाणु जो है एटम, जिसके हम साइंस में पढ़ाई करते हैं, उससे भी छोटा तत्व है आत्मा, और ये कह रहे हैं पूरे शरीर में व्याप्त है, तो कैसे व्याप्त हो जाएगा, इतना छोटा सा बताया बाल अग्र भागस्य और उसका शत भागस्य, तो कैसे होगा, तो श्लोक गलत बोला भगवान ने, बोल रहे हैं यहां पर कि पूरे शरीर में व्याप्त है, तो क्या चीज व्याप्त है पूरे शरीर में, बताइए, आप इतने दिनों से 1.5 साल 2 साल से कक्षा सुन रहे हैं भगवत गीता, आत्मा तो सूक्ष्म है, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, तो पूरे शरीर में क्या व्याप्त है, बताइए कौन बताएगा, पूरे शरीर में क्या व्याप्त, भगवान ने गीता में लिखा जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, अविनाशी आत्मा है, तो पूरे शरीर में क्या व्याप्त है, और आत्मा तो बहुत छोटी और शरीर तो बहुत बड़ा है, तो क्या व्याप्त है पूरे शरीर में, हाँ आत्म व्याप्त है, तो आत्मा तो बहुत छोटी सी, पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है, हाँ तो आत्मा तो बहुत ही सूक्ष्म है, तो पूरे शरीर में आत्मा की चेतना व्याप्त है, क्या व्याप्त है आत्मा की चेतना, तो चेतना और आत्मा एक चीज नहीं है, जैसे बल्ब एक चीज है और उस बल्ब से निकलने वाली रोशनी पूरे कमरे में व्याप्त है, हाँ आदमी बोले बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में व्याप्त है, लेकिन बल्ब तो एक स्थान पर ही है, वैसे ही आत्मा हमारे शरीर में एक स्थान पर रहकर भी पूरे शरीर के अंदर क्या करती है, चेतनता प्रदान करती है, कॉन्शियसनेस, हाँ इसलिए कभी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो कहते हैं क्या हो गया, अनकॉन्शियस, चेतनता चली गई है इसकी, तो आत्मा चली गई क्या उसकी, तो चेतनता का मतलब है चेतनता इस शरीर के अंदर अंदर व्याप्त है, लेकिन वो आत्मा और शरीर के बीच का क्या है, संबंध है, शरीर के और आत्मा के बीच का संबंध है, जैसे हड्डी और मांस के बीच में लिगामेंट होते हैं, हमारे डॉक्टर साहब समझा पाएंगे अच्छे से, हाँ हड्डी और मांस के बीच में लिगामेंट जोड़ते हैं, वैसे ही ये जुड़ाव है आत्मा और शरीर के बीच में चेतना, या फिर उदाहरण से समझ सकते हैं सूर्य एक ही स्थान पर रहता है लेकिन पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी व्याप्त है, ऑस्ट्रेलिया में अलग सूर्य नहीं है, अमेरिका में अलग सूर्य नहीं है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में आत्मा एक स्थान पर रह के भी पूरे शरीर में व्याप्त है, या फिर आप कभी, अब प्रभुपाद जी यहां पर उदाहरण देते हैं, जब आप दवाई की गोली खाते हैं पेन किलर, तो पूरे शरीर में जब दर्द होता है कहते हैं ना आज शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है पेन किलर खा लो, तो पेन किलर एक ही स्थान पे पेट में जाती है और पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती, कैसे, हाँ जी ब्लड सर्कुलेशन से, हाँ तो उसी तरह से जैसे ब्लड पूरे शरीर में उस पेन किलर के आयंस को या एटम्स को पूरे शरीर में वितरण करता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति को चेतना पूरे शरीर में वितरित करती है, तो समझना पड़ेगा इस चीज को, अन्यथा हमारा शरीर अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर हुए, उनका नाम है डॉक्टर हैरी मॉन्सन, क्या नाम है, हैरी मॉन्सन, डॉक्टर हैरी मॉन्सन कहते हैं, विदेशी डॉक्टर है, कि अगर हमारे शरीर को अंदर आत्मा नहीं है तो फिर है क्या, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, और जब उन्होंने विज्ञान से इसको पढ़ा तो वो समझे कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के केमिकल होते हैं, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम ऐसे, और अगर इनकी मात्रा को बाजार से खरीदा जाए तो ये 110 रुपए की कीमत में आते हैं। कितने की? 110 रुपए। अब ये शरीर जिसके लिए हम इतना अहंकार करते हैं, रात दिन श्रृंगार करते हैं, इसकी मूल्य क्या है? 110 रुपया। तो डॉक्टर ने सोचा कि जो विदेशी लोग हैं या साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, वो ये मानते हैं शरीर में किसी एक केमिकल की कमी हो जाने के कारण शरीर मृत हो गया है। तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने कहा कि अगर किसी केमिकल की कमी के कारण मृत हो गया है तो उस केमिकल को पुनः खरीद करके वापस डालने से क्या जीवित नहीं हो सकता? सल्फर खत्म हो गया है तो सल्फर खरीद लाइए, पोटेशियम खत्म हुआ है तो पोटेशियम खरीद लाइए, ब्लड खत्म हुआ है तो ब्लड ले आइए। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके कारण सब कुछ डालने पर भी शरीर मृत का मृत रहता है? तो वो है आत्मा। तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने इस पे स्टडी किया। हाँ, तो आप भी किसी को बता सकते हैं अगर कोई पूछना चाहे तो। आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है, इसको कई प्रकार से समझ सकते हैं। पहला समझने का उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं, कॉमन सेंस। क्या है? है आप सब में कॉमन सेंस, विच इज नॉट कॉमनली अवेलेबल। हाँ, आसानी से सरलता से मिलता नहीं है, वो है कॉमन सेंस। अभी कॉमन सेंस क्या है कि अगर मैं ये शरीर हूं तो मैं ये कहूंगा ये मेरा हाथ है, या ये कहूंगा ये मैं हाथ है। हाँ, ये क्या कहते हैं? ये मेरा, या फिर ये कहें ये मेरी बॉटल है। तो मेरा शब्द, थोड़ा समझिएगा इसको ध्यान से, सूक्ष्म रूप की बात है, ये कोई वैसा सत्संग नहीं है कि आए ताली बजे चले गए, ये थोड़ा सूक्ष्म बात है समझने की। ये मेरी बॉटल है और ये मेरा हाथ है। तो जब हम किसी चीज में मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो वस्तु मुझसे अलग है, भिन्न है कि नहीं? ये मेरा बॉटल है तो इसका मतलब ये बॉटल और मैं अलग हूं। अगर ये मुझसे जुड़ी होती तो क्या कहता? ये मैं बॉटल हूं। तो अगर हम देखें पूरे शरीर में तो हम हमेशा कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पांव में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। अगर ये शरीर मेरा नहीं है तो मैं कौन हूं? अगर ये शरीर ही मैं हूं तो उस डॉक्टर से, उस नास्तिक से ये प्रश्न पूछना चाहिए, अगर आप ही शरीर हैं, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो आप ये क्यों नहीं कहते मैं सर में दर्द हो रहा है, मैं हाथ में दर्द हो रहा है, मैं शरीर में दर्द हो रहा है। हा? क्या बोलते हैं? मेरे शरीर में। मेरे मतलब मैं कोई और हूं और ये शरीर मेरा है, तो मैं कौन हूं? बहुत कॉमन सेंस की बात है। मेरे शरीर में मेरी बॉटल, मेरी काड़ी, मेरे बच्चे, मतलब ये मुझसे अलग है और मैं कोई और हूं। वो मेरा शरीर, तो मेरा मतलब मैं कोई और हूं। ये कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि मेरा नाम की कोई और वस्तु हमारे शरीर में है और उसको क्या कहा जाता है? आत्मा। और कई और तरीके से हम विज्ञान से समझें तो एक डॉक्टर माइकल सेबॉर्न हुए हैं। डॉक्टर माइकल सेबॉर्न, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने काफी सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस, सुना है आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के नजदीक के उनके जीवन के वाक्यात, वो मर भी गए और फिर वापस पुनः जीवित हुए। तो उन्होंने देखा, कई लोगों की रिसर्च करी कि उनके मरने के बाद में शरीर से उनकी आत्मा निकल जाती है और फिर उनको शरीर बड़ा हल्का हल्का महसूस होता है, क्योंकि ये शरीर का वजन हट गया ना। जैसे हमने अगर कोई बैग ले रखा है और बैग उतार के हम नीचे रख दें तो बड़ा हल्का महसूस होता है, वैसे ही जब शरीर से आत्मा निकलती है तो हमको, मतलब हम आत्मा को, बहुत ही हल्का महसूस होता है क्योंकि इस शरीर का बोझ हट जाता है। तो ऐसा उन्होंने लिखा है, द बॉडी बिकम वेरी लाइट। कौन ने लिखा? डॉक्टर माइकल सेबॉर्न, आप सर्च कर सकते हैं, उनकी रिसर्च स्टडी है नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के नजदीक के वाक्यात, अनुभव, ऐसा लिखा गया है। तो इस तरह से, और इसको और भी सिम्टम में डॉक्टर बोलते हैं, एमबीबीएस लेवल पर ही समझ में आता है, आप लोग भी जानते होंगे, एक होता है ओबीई, पढ़ा है आपने कभी? ओबीई, आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, हमारे शरीर से बाहर का अनुभव, और ये इस शरीर में रहते रहते भी होता है। कभी कभी हमको लगता है रात को सोते सोते कि मैं शरीर से बाहर खड़ा हूं और मेरा सामने शरीर मर रहा है, कट रहा है, जल रहा है, फेंका जा रहा है, ऐसा अनुभव होता है? कुछ लोगों को हुआ होगा। तो सही मायने में आत्मा उस समय शरीर से बाहर होती है और वो अपने ही द्वारा अनुभव करवाती है चीजों को वहां पर। जैसे अगर अगर कोई व्यक्ति को लग रहा है कि शेर उसके पीछे पड़ा है और वो भाग रहा है भाग रहा है, तो जब उसकी नींद खुलेगी या पड़ोसी में लेटा हुआ व्यक्ति या उसके परिवार के लोग कहेंगे जागो जागो भाई क्या हुआ, तो वो क्या कहेगा? हाँ हाँ मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ था। कहाँ गया शेर? कह रहे कोई शेर नहीं, सपना देखा है सपना। तो सही मायने में हमारे फेस के ऊपर पसीना आया हुआ होता है, तो इसका मतलब हम आत्मा रूप में उस चीज का अनुभव कर रहे थे। ये सपना कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होती है, सपने में अनुभव भी जीवन का अनुभव ही है। जैसे हमारे पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए और हम भागे पसीना आएगा, वैसे ही सपने में भी अगर शेर पड़ जाए भागे तो पसीना आएगा, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर उन अनुभवों का खाली एक्सपीरियंस देता है, सिम्टम प्रकट करता है, लेकिन एक्सपीरियंस अनुभव करती है आत्मा। इसीलिए सपने के प्रॉब्लम से भी हमारे फेस के ऊपर अलग प्रकार के सिम्टम प्रकट होते हैं। तो ये पूरी स्टडी है, ड्रीम स्टडी, इसको करा गया, काफी साइंटिस्ट ने पढ़ा है, लेकिन विज्ञान बहुत पीछे छोड़ जाता है जहां पर शास्त्र आ जाते हैं। अगर कोई बोले बाल के आकार को नाप के बताओ, इसका माप क्या है, कैसे मापेंगे? परमाणु से भी छोटी वस्तु कैसे मापेंगे? कोई मिलीमीटर मेट्रोमीटर कोई मीटर नहीं बना, कोई टेप नहीं बना, कोई मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है कि आत्मा को तोल सके या नाप सके। फिर भी विदेशी लोग मानते नहीं है ना, विदेश में लोगों को बहुत सीखने और जानने की प्रयास रहता है। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि एक चैम्बर बनाया ग्लास का, उस ग्लास चैम्बर में विभिन्न प्रकार के कैमरे लगाए गए और ऑक्सीजन पाइप दिया गया और व्यक्ति जो कोमा में था, जो शरीर छोड़ने वाला था, उसके शरीर को वेंटिलेटर पे रख कर के चैम्बर के अंदर रखा, इनक्यूबेटर के अंदर, और फिर उसे ग्लास को पूरा सील कर दिया पैक, और उसमें बस पाइप के थ्रू हवा आ रही है वेंटिलेटर के थ्रू, बाकी अगर वेंटिलेटर हटा दें तो उसके अंदर कोई हवा नहीं है। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही वेंटिलेटर हटाया गया तो वो ऑब्जर्व करने के लिए कि आत्मा कैसी दिखती है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की बुक्स आ रही थी, तो उन्होंने जब पढ़ा तो समझ ही नहीं पाए कि ये आत्मा, ये शरीर मर गया और इसमें से कुछ चीज थी वो निकल गई, कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, किसी कैमरे में वो फोटोग्राफ नहीं आया, लेकिन बस एक सिम्टम प्रकट हुआ। क्या सिम्टम था? उस ग्लास चैम्बर के अंदर जैसे बुलेट जाती है, इतनी तेजी से वो आत्मा निकल के गई कि उसकी स्पीड से उस ग्लास में छेद हो गया, क्रैक क्रैक पड़ गया, टूट गया, छेद हो गया। तो ये सोचिए आप, ये है आत्मा का सिम्टम। आत्मा इतनी फास्ट बॉडी से निकल जाती है, तो वो शरीर से निकली, तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ सही मायने में ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आयन स्टीवेंसन। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने क्या किया कि पुनर्जन्म के विज्ञान के ऊपर कई रिसर्च करी। हिंदुस्तानी लोगों को तो हम बोल सकते हैं पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन ये सारे क्रिश्चियन डॉक्टर्स हैं जिनके यहाँ शास्त्र बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा जाता या शास्त्र में इतना ज्ञान अवेलेबल नहीं है। वो लोगों ने रिसर्च करके जाना कि पुनर्जीवन होता है, हमारे शरीर को छोड़ करके हम जब निकल जाते हैं तो दूसरा शरीर धारण करते हैं। तब उन्होंने कई सारे थाउजेंड से भी ज्यादा, हजारों से ज्यादा पुस्तकें हैं पुनर्विज्ञान के ऊपर। प्रभुपाद जी ने भी एक पुस्तक लिखी थी पुनरागमन, री इनकारनेशन, उसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग कभी समय में। लेकिन अगर आप समझें तो उन पुस्तकों के अंदर कई कई हजारों तो पुस्तकें हैं और हर पुस्तक में हजारों केस स्टडीज ली गई हैं। कई केस स्टडीज लेकर पता किया है कि कैसे व्यक्ति को शरीर परिवर्तन होता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो एक इस प्रकार का इंसिडेंस आया था कि एक माना चक्रवर्ती नाम की एक बंगाली लेडी थी, बंगाल में उसका मृत्यु हुई और बंगाल में जब वो अपना शरीर छोड़ा तो उसके कुछ वर्षों बाद शुक्ला नाम से उसने किसी और घर में जन्म लिया उत्तर प्रदेश में। तो जब उसने जन्म लिया और वो बड़ी होने लगी, 6 साल की हो गई, तो उसको अपना पुराना जन्म याद था, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम कौन है,
आत्मा है। तो हमारे शरीर में तीन प्रकार के शरीर होते हैं। एक शरीर होता है जो पंच तत्व का बना हुआ है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और पानी, नीर। हाँ, या फिर भगवान शब्द को अगर पांच भागों में बांटें, भगवान, तो बोल के देखिए आप, भ ग व अ न। इसमें भ से हो गया भूमि, ग से हो गया गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। तो पंच तत्व से ये शरीर बनता है। लेकिन ये शरीर के नाश हो जाने के बाद में आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है, उसके बीच में एक और शरीर होता है, उस शरीर को बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार का शरीर, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो हमारे शरीर में तीन शरीर हैं। पहला शरीर है, बोलिए, स्थूल शरीर। सब लोग बोलिए, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर पांच तत्वों का बना है। उसके बाद दूसरा शरीर है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तीन तत्वों का बना है, मन बुद्धि अहंकार। और इसके बाद तीसरा शरीर है जो कि आत्मा कहलाती है, वो तीन तत्वों का बना है, जिसे कहते हैं सत, चित और आनंद। तो इस तरह से तीन और तीन, छः और पांच, 11 भागों में हमारा शरीर बटा है। ये हमें समझना चाहिए। तो क्या होता है, ज्यादातर मेडिकल साइंस अभी तक सिर्फ पांच तत्वों की स्टडी ही कर पाई है। अगर बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से बोले कि न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन जी, आप बताइए मन कैसा दिखता है, देखा है उन्होंने मन कैसे, मन की पढ़ाई करते हैं सिम्टम के द्वारा। तो मन के भी नीचे का शरीर है आत्मा, सच्चिदानंद, वो कैसे दिखेगा? बुद्धि देखिए कभी किसी ने, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कितने साइज की बुद्धि है इसकी, कला खोलो इसका ब्रेन निकालो, कितनी बड़ी बुद्धि है, ऐसे हो सकता है? तो बुद्धि का भी नहीं माप लग सकता। अहंकार कितना बड़ा है, वो भी माप नहीं लग सकता। तो उसी तरह से सूक्ष्म शरीर को देखना मुमकिन नहीं है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर आत्मा को देखना नामुमकिन है। तो कोई वीडियो बनाते हैं आजकल, देखते हैं वीडियोज आ रहे हैं, आत्मा निकली शरीर से जा रही है, ऐसे नकली फेक वीडियोज हैं। आत्मा का वीडियो नहीं बन सकता। आत्मा का सिम्टम नजर आता है। जितने भी भूत प्रेत के सीरियल दिखाते हैं, घोस्टली बॉडी, तो उसमें क्या होता है, आत्मा किसी मृत शरीर में एंटर करके, जिसकी बॉडी अभी जली नहीं है, उसको पुनर्जीवित करके उसके द्वारा भोग कर सकती है। लेकिन आत्मा बिना शरीर के दिखाई नहीं देगी। लोग बोलते मैंने पेड़ पर आत्मा देखी, तो आत्मा हो ही नहीं सकती है। आत्मा तो सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतर है। मन ही नहीं दिख रहा तो आत्मा कहां से दिखेगी? तो ये सब क्या है, अब बाहर की दिखावटी बातें हैं। तो इसीलिए श्वेताक्षर उपनिषद में बताया कि बाल अग्र भाग अस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल अग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाल के अग्र भाग के 100 हिस्से करो, उसके भी 100 हिस्से करो, इतनी छोटी आत्मा है। मतलब बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, सोच के देखिए कितना छोटा आत्मा का साइज है। और ये आत्मा रहती कहाँ है हमारे शरीर में? तो कई लोग बोलते हैं माथे के चक्र में रहती है, कोई कहता है दिल में रहती है, कोई कहता है पेट में रहती है, रावण के पेट में थी, ऐसे करके बहुत सारी बातें ना, उल जलूल बातें होती हैं। लेकिन शास्त्र के द्वारा हमें पता चलता है आत्मा रहती है हृदय देशे अर्जुन तिष्ठा थी। हाँ, आत्मा हृदय देश में, हृदय के रीजन, रीजन ऑफ द हार्ट, हृदय देश में रहती है। इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाने पर भी शरीर मरता नहीं है। अगर हार्ट में रहती होती तो मेरी आत्मा किसी और के शरीर में चली गई। हाँ, तो मरती नहीं है आत्मा, हृदय देश में रहती है। यहाँ हृदय है इसके देश में, रीजन ऑफ द हार्ट, तो हृदय देश में आत्मा रहती है। और पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है? चेतना के द्वारा। तो चेतना के द्वारा मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मर लगा है कहीं और पूरे ऑल इंडिया मेडिकल में बिजली आ रही है। तो ये पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे पूरी बिल्डिंग में व्याप्त है बिजली, लेकिन इसका सोर्स एक जगह पे है। तो हृदय देश में रहती है आत्मा और पूरे शरीर में उसकी चेतना रूप में व्याप्त है। हाँ, ये कहा जाता है चेतना रूप में व्याप्त रहना। तो चेतना रूप में व्याप्त रहने के लिए इसमें उदाहरण दिया है कि हमारे शरीर में, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, पांच कोश होते हैं। कितने कोश? तो याद है किसी को कौन कौन से कोश थे? पहला कोश होता है अन्नमय कोश, हमने पढ़ा था अन्नमय कोश, जो कि अन्न के द्वारा हमारी मांस मज्जा हड्डी बनती है, इसे बोलते हैं अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश के ऊपर एक और कोश होता है जिसे क्या कहते हैं बताएंगे, पिछले हफ्ते बताया था याद। और अन्नमय कोश के ऊपर का कोश है प्राणमय कोश। कौन सा कोश? प्राणमय कोश। प्राणमय, पांच प्रकार के प्राण होते हैं हमारे शरीर में, प्राण वायु जिसे कहते हैं। तो पांच वायु कौन सी हैं? इसी श्लोक में खोली अपना बुक पुस्तक, इस श्लोक में भावार्थ में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने पांच प्रकार के प्राण वायु के बारे में वर्णन किया है। आप पढ़िए इसी श्लोक में, 17वें श्लोक के नीचे पैराग्राफ में तीसरे नंबर का जो श्लोक लिखा है उसके तात्पर्य में लिखा है, आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा पांच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। तो पांच प्राण बताए हैं कौन से? प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। तो ये जो प्राण वायु है ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, प्राण वायु कहां रहती है हमारे शरीर में पता है? हमारी जो आंखों की इंद्रियां हैं जिससे हम देख पाते हैं, हाँ ये चेतना है ना हमारे शरीर में, आत्मा ने शक्ति दी चेतना, चेतना ने किस प्रकार से चेतना हमारे शरीर तक पहुंची, तो उसका जो मीडियम है, अगर किसी को दवाई पहुंचानी है किसी के शरीर में तो सोडियम के मीडियम से पहुंचाई जाती है ना, डाइक्लोफेनेक पहुंचानी है तो सोडियम के माध्यम से जा रही है, या पानी के अंदर दवाई मिला के इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो उस तरह से ड्रिप देनी है, ग्लूकोज के अंदर मिलाकर दवाई देते हैं, वैसे ही चेतना को हमारे शरीर के अंश मात्र में पहुंचाने का काम करती है प्राण कोश, प्राणमय कोश। तो आंखों के अंदर, जिह्वा के अंदर, कानों के अंदर जो वायु घूम रही है इसको कहते हैं प्राण वायु। जब प्राण वायु का विकार होता है तो आंखों में दिखना कम हो जाता है, और इसीलिए प्राणायाम करने से, नासिका का प्राणायाम करने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है हमारे को, क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्राण वायु विकार दोष समाप्त होते हैं। उसके बाद हमारे जो कंठ के नीचे का हिस्सा है जिसे ENT कहते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट, उन जगह पर रहती है अपान वायु, दूसरी वायु। अपान वायु विकार होने पे गला बैठ जाता है, खांसी हो जाती है। अपान वायु विकार दोष दूर करने के लिए अलग प्रकार के योग बताए जाते हैं, दवाई बताए जाते हैं। उसके नीचे लिवर, गॉल ब्लैडर जो नीचे का हिस्सा है, छाती, लंग्स, इसके नीचे का हिस्सा जो है उसमें आती है व्यान वायु, तीसरी वायु। और व्यान वायु के नीचे जो आती है समान वायु, इंटेस्टाइन जो है। आंतों का अगर कोई बीमारी है इसका मतलब हमारी समान वायु में कोई विकार उत्पन्न हुआ है, तो समान वायु के योग और दवाई लेने से क्या होगा, समान वायु विकार दूर होंगे, तब प्राणमय कोश स्वस्थ रहता है। और आखिरी है उदान वायु, जो पूरे शरीर में व्याप्त है और उसी से पसीना आता है, ये जो स्वेटिंग आती है ये आती है किससे? उदान वायु से। और हमारी आंखों की पलकें झपकती हैं ये उदान वायु से झपकती हैं। हाँ, तो ये बड़ा ही साइंटिफिक ज्ञान है, ये किसी को नहीं मालूम होगा। तो ये अन्नमय कोश पे हमारे को इंजेक्शन दवाइयां काम आती हैं, अन्नमय कोश के ऊपर काम आता है प्राणमय कोश, जिसमें पांच वायु हैं जिनके द्वारा आत्मा तैर रही है, चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो ये समझने वाली बात है। और फिर पांच कोशों में तीसरा नंबर का कोश आता है मनोमय कोश। कौन सा कोश? मनोमय कोश। मन के द्वारा हमारा जब डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे अंदर काफी विकार उत्पन्न होते हैं। हाँ, जिस तरह से आप में कई लोग रिसर्च में हैं तो वो बता सकते हैं, एक स्टडी होती है जिसे कहते हैं प्लेसिबो स्टडी। जानते हैं कोई लोग प्लेसिबो स्टडीज? कितने लोग जानते हैं? मैं, एक माता जी जानती हैं, प्रभु जी जानते हैं। प्लेसिबो स्टडीज में क्या होता है? हाँ, प्रभु जी लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, वो डॉक्टर हैं उस फील्ड में, रिसर्च हैं, रिसर्चर हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जैसे दो ग्रुप लिए, एक माता का ग्रुप, एक प्रभु जी का ग्रुप, इन लोगों को एक नई दवाई खिलाई गई जिसमें चीनी की गोलियां बांट दी गई और बोला ये सर दर्द दूर करने की गोली है, और यहां पर सही मायने में सर दर्द दूर करने की गोली दी गई। अब यहां पर जो है, इन लोगों ने सर दर्द की जब गोली ली तो एक घंटे बाद बोला हमारा सर दर्द ठीक हो गया है, और इन लोगों ने दो घंटे बाद बोला कि कुछ आराम मिल गया है, उतना ठीक तो नहीं हुआ लेकिन कुछ आराम मिल गया। वो जो कुछ है वो जो कुछ की मात्रा है कि मतलब कुछ चीजें तो हमारे मन से ही ठीक हो रही हैं। वो जो कुछ ठीक हो गया क्योंकि गोली खाई है तो कुछ ठीक हुआ, वो कुछ की जो मात्रा है वो इसमें से जब घटा देंगे तो सही मायने में निकल कर आएगा कितनी देर में दवाई काम करती है, उसे कहते हैं प्लेसिबो स्टडी। तो सही मायने में वही चीज हमें यहां समझनी है कि मन हमारा बहुत ही बड़ा मित्र भी है और बहुत बड़ा शत्रु भी है। जब दवाई देते हैं दवाई के साथ में, अगर मन हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारे हमारी बीमारी जल्दी ठीक होती है। इसीलिए कहते हैं जब व्यक्ति बीमार होता है तो कहते हैं अच्छी बातें बोलो, कीर्तन सुनो, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। मनः त्रायते इति मंत्र, मन को तारने के लिए ही दिया गया है मंत्र। तो मंत्र काम करता है जब हम बोलते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से मन को तारने के लिए जो मंत्र दिया गया है उससे मन हमारा वश में आता है। और मनमय कोश के ऊपर कोश होता है जिसे कहते हैं विज्ञानमय कोश, स्टडी ऑफ रियलाइजेशंस, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो मन के ऊपर का कोश है विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश अगर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, कई भक्त हैं जिन्हें अनुभूतियां होती हैं भगवान से वार्तालाप शुरू हो जाता है। एक भक्त थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य, वो साउथ इंडिया से दक्षिण भारत से चलकर के वृंदावन धाम आए और जब वृंदावन धाम में प्रवेश किए तो उन्होंने कई गोस्वामी और भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढ कर निकाला। तो वो पूछते थे अपने गोपाल जी से, उनके पास जो विग्रह था, कि गोपाल जी कहां आपने लीला करी थी रास लीला। तो गोपाल जी कहते थे चल वल्लभाचार्य सीधा चल और अब दाएं को मोड़, अब बाएं को मोड़, और ऐसे करके उस स्थान पे ले जाते थे जहां उन्होंने रास लीला करी। कहा इसी जगह पे मैंने रास लीला करी है। कौन बता रहा है? भगवान। हाँ मूर्ति बात करने लगी है तो मूर्ति बात नहीं कर रही है, मूर्ति के अंदर जिस तरह शरीर में आत्मा रहती है ऐसे ही मूर्ति में जब परमात्मा रहते हैं तब तक वो भगवान है, जब मूर्ति से परमात्मा चले जाते हैं तो वो पत्थर है, जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो वो डेड बॉडी है। शरीर माइनस चेतना इज डेड बॉडी, शरीर माइनस चेतना, शरीर माइनस आत्मा इज डेड बॉडी। और शरीर होने के बाद में चेतना का ज्ञान ना होना इज अ मूविंग डेड बॉडी, चलता हुआ मृत शरीर है, चल तो रहा है लेकिन कोई ज्ञान लेने की उसके अंदर अभिलाषा नहीं है। तो हम आए सत्संग में और अगर ज्ञान प्राप्त ना करें, उस ज्ञान से भक्ति प्राप्त ना करें, कृष्ण के चरणों में ना जाएं, मंत्र जपना ना सीखें, तो हम क्या है? शरीर माइनस आत्मा इज इक्वल टू डेड बॉडी, शरीर माइनस नो क्वेश्चन अबाउट आत्मा इज इक्वल टू मूविंग डेड बॉडी, चलता हुआ मेरा शरीर जो पूछे नहीं मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं सत्संग में खिचड़ी खाने जाता हूं या ज्ञान प्राप्त करने जाता हूं, मैं सत्संग में टाइम पास करने जाता हूं या सच में अपने जीवन का आत्म साक्षात्कार चाहता हूं। और प्रभु जी आते हैं अपना गला सुखा सुखा के बोलते हैं तो उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में भगवान का अनुभव करना चाहता हूं या फिर बस मैं आता हूं और जाता हूं। तो ये चीज समझने वाली है। तो उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश, जब हमारा परमात्मा से वार्तालाप शुरू हो जाता है, जब जप करते हैं कई लोगों को अनुभूतियां होती हैं, लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब वो परमात्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इस शरीर को चलाने वाला जो ज्ञान है उसको बनाने वाला परमात्मा आज हमसे जुड़ गया या हम उससे जुड़ गए हैं, उस जगह पर कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार होने को कहते हैं विज्ञानमय कोश, खुल गया व्यक्ति का। और आखिरी कोश होता है उसे कहते हैं आनंदमय कोश। क्या कहते हैं? आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश के खुल जाने पर व्यक्ति सदा ही आनंद में रहेगा। सचित आनंद जो है हमारी आत्मा, वो हम समझ जाएंगे आत्मा आनंद पूर्ण है तो दुखी नहीं होगा व्यक्ति हमेशा। कैसा होगा? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्म भूत, वो आत्मा को समझने वाला व्यक्ति कैसा होगा? ना शोचति, सोचेगा नहीं, ना कांक्षति, ना कोई इच्छा करेगा। कैसा होगा? प्रसन्न आत्मा, हमेशा हंसता हुआ खुश। हंसने का मतलब ये नहीं हा, 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 ऐसे करेगा, लाफ्टर शो नहीं करेगा, लेकिन प्रसन्न रहेगा। उसे किसी किसी भी बात का कोई दुख नहीं सताएगा कभी जीवन में, प्रसन्न आत्मा। तो ये कब हो पाएगा? जब आनंदमय कोष खुलेगा। तो हमारे शरीर में, इसमें प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस तरह से आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी तो जानते होंगे साइंटिस्ट लोग यहाँ पर, आरबीसी रेड ब्लड सेल, जानते हैं कितने लोग जानते हैं आरबीसी? आरबीसी सब जानते हैं, रेड कॉर्पस सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में उनको कहते हैं लाल रक्त कण। तो लाल रक्त कण जो है वो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं, है ना। तो बताते हैं कि फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन ले जा रहे हैं वो आरबीसीज, उनको शक्ति कौन देता है? हमारे शरीर का सबसे छोटा कण है आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। उस सेल को भी शक्ति कौन दे रहा है? कौन दे रहा है शक्ति? आत्मा। आत्मा से जो चेतना रूपी शक्ति निकल रही है वो ही आरबीसी से काम करवा रही है, फेफड़ों के अंदर ले जा रही है, बाहर ला रही है, ले जा रही है, बाहर ला रही है। और जब आरबीसी के अंदर फ्यूजन हो जाता है, दो सेल टकरा करके बस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसे कहते हैं रक्त उत्पादक संलयन, फ्यूजन हो जाता है, रेड ब्लड सेल जनरेटिंग फ्यूजन हो जाता है, ऐसी अवस्था में क्या होता है? व्यक्ति के शरीर से चलना बंद हो जाता है, वो मर जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है इसके अंदर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इसमें लिखा है औषधि विज्ञान, आखिरी आखिरी तात्पर्य के आखिरी में देखिए तो लिखा है औषधि विज्ञान के बारे में। जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन बंद हो जाता है। आत्मा अगर निकल जाएगी तो फिर आरबीसी का ऑक्सीजन ले जाना क्यों बंद हो जाता है? अरे आरबीसी तो है, फेफड़े भी हैं, फिर अब क्यों नहीं बना रहा वो ऑक्सीजन, दे नहीं रहा शरीर के अंदर? क्योंकि उसको शक्ति देने वाली आत्मा शरीर से निकल गई है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है, हार्ट से ही पूरे शरीर को शक्ति मिल रही है। और हार्ट को शक्ति कहां से मिल रही है? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठाति ब्राह्म्यम सर्वभूतानाम, आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं हृदय के देश में मैं रहता हूं और आत्मा रहती है, और मेरे द्वारा, आत्मा के द्वारा पूरे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा के जगह, हृदय के जगह पर दो चीजें रहती हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा पूरे शरीर में चेतना को व्याप्त करती है, जो इस श्लोक का तात्पर्य है, और परमात्मा बैठ करके साक्षी रूप में हमारी क्रियाओं को नोट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। क्योंकि आनंदमय कोष से लेकर अन्नमय कोष तक की सारी शक्ति परमात्मा के हाथ में है। तो ऐसे ही एक कथा समा सुनाकर समाप्त करेंगे आज की कक्षा को। कई लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, कई लोग बोलते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, हर हर महादेव, हर हर में महादेव को ढूंढते हैं, बोलते हर हर महादेव, हर हर में महादेव है। ऐसा नहीं है, नर नारायण नहीं हो सकता। इसी बात पर एक कथा आती है शास्त्रों में, दो भक्त थे, उनका नाम था शिवराज और रामदास। तो जो शिवराज थे वो मानते थे कि भगवान और आत्मा, परमात्मा और आत्मा एक है, और रामदास जो थे वो भगवान के दास थे और वो मानते थे आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम कौन है? भगवान के दास है, हम भगवान नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गरीब को खिलाया तो तुमने भगवान को खिलाया, ऐसा नहीं है। गरीब को खिलाने को मना नहीं है, गरीब को खिलाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा गरीब को खिलाने की सेवा में अलग है। परमात्मा पूरी शक्ति का स्रोत है, वो भिखारी में थोड़ी आएगा, वो भिखारी के अंदर रहकर साक्षी रूप में रहता है, लेकिन वो परमात्मा वो नहीं है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो वो कैसे समझेंगे? तो शिवराज जो थे उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो रामदास ने कहा नहीं नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं, परमात्मा बहुत विशाल है, और आत्मा बहुत छोटी है, परमात्मा विभू है और आत्मा अणु है। कृष्ण रूप में भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं 7 साल की अवस्था में, क्या हम उठा सकते हैं? जब हम नहीं उठा सकते तो नर नारायण कैसे हो जाएगा? नारायण वाले लक्षण भी तो प्रकट करने पड़ेंगे। भगवान ने 16,000 रूपों में अपने आप को विस्तार किया और हर गोपी के भाव में अपना रूप प्रकट किया, क्या कोई नर कर सकता है? तो नारायण कैसे हो गया? ये बात उन्होंने उनको बोली। लेकिन फिर शिवराज ने कहा कि देखो भाई, जिस तरह से पानी की एक बूंद समुद्र में जाकर जब मिल जाती है तो पता ही नहीं चलता है कि वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो रामदास ने कहा, तुम मूर्ख हो, जब हरे रंग का तोता पेड़ में जाके बैठ जाता है तो क्या वो तोता पेड़ में लीन हो जाता है? हरा तोता जब पेड़ में बैठ जाता है तो क्या लीन हो जाता है? तोता और पेड़ अलग अलग अपनी अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसका मतलब आत्मा शरीर छोड़ के जब भगवत धाम जाती है तो परमात्मा से अपना अस्तित्व अलग बनाए रखती है, कभी लीन नहीं होती है। ये लीन होने वाला कंसेप्ट जो है ये मूर्खता है, अज्ञानता है, उन्होंने बोला रामदास ने शिवराज को। तो शिवराज ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। कहा कि देखो, ये जो चादर है, ये चादर धागे से बनी है। हाँ, तो उन्होंने एक धागा खींच के दिखाया, बोले इस चादर को या चादर कहो या धागा कहो, क्या फर्क पड़ता है? इस कुर्ते को कुर्ता कहो या धागा कहो, क्या फर्क पड़ता है? इस धोती को धोती कहो या धागा कहो, क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम आज इस जगह पर, वो लोग हिमालय में बैठकर ही चर्चा कर रहे थे बद्रीनाथ आश्रम में, तो उन्होंने कहा, ठीक है, सर्दी का मौसम है, इतनी ठंड है, तुम धागे से काम चला लो, मैं रात में कंबल से काम चला लेता हूं, क्योंकि कंबल और धागे में कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, वो अपनी बात पे अड़े रहे और रात को धागा ओढ़ के सो गए। धागा कैसे ऐसे डाल दिया होगा मुंह के ऊपर, और वो कंबल लेके रामदास सो गया। शिवराज को रात में बहुत ठंड लगी तो उठ करके रामदास के पांव में पड़ गया, बोला माफ करो, मेरी अज्ञानता थी, मुझे कंबल दे दो। तो उन्होंने कहा, मतलब? तो उन्होंने रात्रि में चर्चा की, बोला मैं समझ गया, धागा धागा ही रहता है और चादर चादर ही रहता है, चादर से अगर मैं धागा निकाल दूं तो वापस इसमें डालना नामुमकिन हो जाएगा, है कि नहीं? कोई डाल सकता है? एक कंबल से या चादर से धागा निकाल दें तो उसे तोड़ के फेंक देते हैं, कभी वापस इसके अंदर डालते हैं? तो ये परमात्मा से अनेकों आत्माएं प्रकट तो होती हैं, लेकिन वापस उसमें लीन नहीं हो सकती हैं। वो अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं, जीते जी भी और मरने के बाद भी। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्त का मतलब ही है अपने अस्तित्व को सदा दास के रूप में बनाए रखना, जीते जी मूर्ति रूप में भगवान की सेवा करना, हरि नाम की सेवा करना और भगवान के बारे में चर्चा करना, और मरने के बाद में सदा भगवान के नित्य दास बन के सेवा करना। ये नहीं होता कि मरने के बाद में मैं शरीर में घुस जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा, समुद्र में मिल जाऊंगा, ये सब अज्ञानता और मूर्खता है। तो ये यहाँ पर श्लोक में बताया गया है कि हम जो है वो आत्मा है और हमारा शरीर जो है वो हमसे अलग है, और आत्मा से जो चेतना में रूप में निकलती है वो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। और जो हमारा शरीर है इसको अगर देखें तो इसकी पूरी फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है? BODY। क्या है? BODY, बॉडी। और इस बॉडी के अंदर कौन रहती है? सोल, आत्मा। तो बॉडी, बॉडी जिसे बोलते हैं, बॉडी में पेन है, बॉडी एक है, बॉडी पेन है, वो बॉडी का अगर फुल फॉर्म देखें भौतिक स्तर पे, तो बॉडी में बी का मतलब होता है, बी फॉर बर्थ, जन्म, और ओ फॉर ओल्ड एज, बुढ़ापा, और डी फॉर डिसीज, बीमारियां, और डेथ, मृत्यु, और वाई फॉर यमराज, यमदूत। तो ये जो शरीर है इन्हीं चार अवस्थाओं में रहता है, पहले जन्म लेता है, उसके बाद बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद यमदूत आते हैं, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है बॉडी। ज्यादा कुछ नहीं याद रख सकते श्लोक गीता के, तो दिन में 4-5 बार अपनी उंगलियों पर यही याद कर लिया करो, मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं। तो उस बॉडी में क्या होगा, समझ में रहेगा कि जन्म हुआ है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी और फिर यमदूत ले जाएंगे, किसको निकाल करके, बॉडी को, आत्मा। तो बॉडी तो मेरे काम आने वाली नहीं है, तो मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो ये अगर याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं सदा कि मैं शरीर नहीं हूं, कौन हूं, आत्मा हूं, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक है, तो हम यहीं समाप्त करेंगे। सब लोग साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।